आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। काशीवासियों ने कहा, इससे क्षेत्र के विकास को मिलेगी और गति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि और रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री के 20 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां हुई तेज। पुलिस कमिश्नर ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ। भाजपा के पूर्व विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित याचिका को आज लिया वापस। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक अहम फैसले में वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रूट पर गंगा नदी के ऊपर पुल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पुल को ट्रेन और सामान्य परिवहन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल को 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह पुल विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक क्षमता वाला पुल होगा।
अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाएं, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट हो। इसलिए जरूरी है कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। और इस कॉरिडोर पे गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों ने स्वागत किया है। निर्मल गंगा के लिए अविरल प्रयास करने वाले राजेश शुक्ला ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला वाराणसी के विकास को और गति देगा।
काशी वासियों में इसके लिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि पूरे पूर्वांचल को ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। यह पुल बन जाने से विकास के कई प्रतिमान स्थापित होंगे और निश्चित रूप से 6 लेन का यह पुल विकसित भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज हुई बैठक में देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत केंद्र सरकार के 49 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3% बढ़ा दिया गया है।
हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ, इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पे चेक में एड होगा।
इसके अलावा आज हुई बैठक में रबी की 6 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। इन फसलों की एमएसपी में 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि फसलों में मार्जिन लागत के 50% से कहीं ज्यादा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह निर्णय अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ ही उन्हें कृषि क्षेत्र में और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 1200 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की योजना शामिल है। प्रधानमंत्री सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण भी करेंगे। उनके दौरे को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन तैयारियां तेजी से पूरी कर रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आज संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर के इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने की प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को भी कोई तकलीफ न हो। इसके अलावा एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान यहाँ पर रहेगा। कई स्तर की सुरक्षा योजना हमारी है, जिसमें मल्टीपल लेवल ऑफ लेयर्स रहेंगी। उसमें हमारे ATS के जवान रहेंगे, SPG तैनात रहेगी। इसके अलावा करीब 5000 पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। रूफटॉप ड्यूटी लगेगी, ड्रोन से निगरानी की जाएगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 62 स्थित ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड का दौरा किया। इस मौके पर श्री मुरुगन ने संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने नोएडा फिल्म सिटी के मारवा स्टूडियोज और एशियन अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन का भी दौरा किया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज हापुड़ में टोल प्लाजा मामले में बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय पहुंचे। कोर्ट में बयान पूरे दर्ज न होने पर उन्हें गुरुवार को फिर न्यायालय में बुलाया गया है। इस मुकदमे की सुनवाई हापुड़ में अपर जिला जज द्वितीय की अदालत में चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी के अधिवक्ता आरिफ खान ने बताया कि आज बयान पूरे दर्ज नहीं हुए हैं और कल फिर बयान दर्ज किए जाएंगे। गौरतलब है कि हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के छिजारसी टोल प्लाजा पर 3 फरवरी 2022 को मेरठ से दिल्ली लौटते हुए श्री ओवैसी पर हमला हो गया था। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित अपनी याचिका को आज वापस ले लिया। पूर्व विधायक ने बताया कि उन्होंने यह याचिका सपा नेता अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को लेकर दाखिल की थी। जब यह याचिका दायर की गई थी तब वह मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। निर्वाचन आयोग ने कल प्रदेश की 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर मतदान कराने की घोषणा की थी। उपचुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मिर्जापुर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि मझवा विधानसभा सीट पर 3,99,259 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 262 मतदान केंद्र और 442 मतदेय स्थल बनाए जाएंगे।
निष्पक्ष पारदर्शी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जो सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, FST टीम, हमारी SST टीम, वीडियो अवलोकन टीम या हमारी मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति, कॉल सेंटर की स्थापना, ये सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हो गई हैं। हमें 17 क्रिटिकल बूथ है और इसके अतिरिक्त सभी बूथ्स पर हमने EMF की सुविधा और अन्य सभी सुविधाओं का सुनिश्चित किया जा रहा है। वेबकास्टिंग भी सभी बूथों पर की जाएगी, जिसके लिए वैकल्पिक प्रकाश की व्यवस्था और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की।
प्रदेश में परिवार कल्याण महानिदेशालय के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला ANM के 5,272 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होंगे। शुल्क समायोजन व संशोधन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। आवेदन शुल्क ₹25 है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि मेले का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों और सोलर पंप पर अनुदान दे रही है।
कृषि यंत्रों के पोर्टल 23 मई तक खुला हुआ है और 50% अनुदान पर वो कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपलब्ध होने वाले हैं। ₹10,000 तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर कोई टोकन मनी जमा करने की जरूरत नहीं है। शेष के लिए 1,00,000 रुपए तक ₹2,500 एडवांस उनको जमा करना पड़ता है और 1,00,000 के ऊपर के लिए ₹5,000 तक। इसी प्रकार से कुसुम सोलर पंप 40% अनुदान पर लगभग 40,000 सोलर पंप के लिए पोर्टल खुले हुए हैं और किसान भाइयों से आग्रह है कि इस सुविधा का वो लाभ उठाएं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की सीनियर महिला T20 प्रतियोगिता के ग्रुप डी के मुकाबले कल से लखनऊ में खेले जाएंगे। कल से 28 अक्टूबर तक कुल 21 मुकाबले लखनऊ में होंगे। सभी मैच अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होंगे। ग्रुप डी में रेलवे, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, केरल और त्रिपुरा की टीमें हैं। प्रतिदिन 3 मुकाबले खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। काशीवासियों ने कहा इससे क्षेत्र के विकास को मिलेगी और गति। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि और रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री के 20 अक्टूबर को प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियां हुई तेज। पुलिस कमिश्नर ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ। भाजपा के पूर्व विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित याचिका को आज लिया वापस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।